दिन भर 11 जनवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, अमित शाह ने किया चुनावी शंखनाद।
एक बार 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, दक्षिण सिर छूट गया है, केरल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम।
यूपीएससी टॉपर रहे शाह फैसल ने इस्तीफे के बाद कहा, फिलहाल किसी पार्टी में जाने का इरादा नहीं। और विवेचना में आज सुनिएगा कैफी आजमी की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू।
मैंने अब्बाजान से कहा कि मैं सिर्फ कैफी से शादी करूंगी, अगर कैफी मट्टी भी उठाएंगे, मजदूरी भी कर रहे होंगे, तो भी मैं उनके साथ मट्टी उठाऊंगी और मैं उनसे शादी करूंगी।
लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। आज से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो आगामी चुनावों में यानी 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन को हराएंगे। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी पाया है। उनके साथ 3 अन्य लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को भी दोषी ठहराया गया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या 2002 में हुई थी। सजा का ऐलान इस महीने 17 को किया जाएगा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सुनवाई के लिए गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। अगस्त 2017 में इसी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को बलात्कार मामले में भी दोषी करार दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर फिर से बहाल किए गए आलोक वर्मा ने इसके 48 घंटों के भीतर ही इस्तीफा दे दिया है। पद पर वापसी के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने सीवीसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा को पद से हटा दिया। फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के तौर पर उनका तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने ये पद संभालने से इनकार कर दिया। क्रामिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव चंद्रमौली को दिए अपने इस्तीफे में आलोक वर्मा ने लिखा है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लाउड जूंकर ने कहा है कि ब्रेक्सिट के मामले में इसके बदले यूरोपीय संघ के ब्रिटेन को किसी तरह की कोई पेशकश देने का सवाल पैदा नहीं होता। रोमानिया के दौरे पर गए जूंकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रेक्सिट के प्रस्तावित मसौदे को ब्रितानी संसद नकार देगी। जूंकर ने कहा कि संघ टेरिजा मे सरकार को आश्वासन तो देना चाहता था, लेकिन अब इस पर फिर से बातचीत नहीं होगी।
Il n'y a pas de quiproquo. Nous avons dit Conseil européen et Commission.
अब और कोई लेन देन नहीं होगा। यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय संघ दोनों ने ही कहा है कि हम इस मामले में फिर से बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन इस बारे में किसी मुद्दे पर और जानकारी मांगी जाएगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्पष्टीकरण मांगा जाए तो हम बता सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, खासकर आयरलैंड के मामले को लेकर। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लाउड जूंकर के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए आर्थिक मदद ना मिली तो वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट सांसदों से जारी बहस के कारण अमरीकी सरकार का आधा कामकाज बीते 20 दिनों से ठप पड़ा है। इस कारण जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनमें वर्जीनिया में रहने वाली सनी ब्लेलॉक और उनके पति आर्लिंगटन शामिल हैं। सनी जिस कंपनी में काम करती हैं वो अमेरिकी सरकार के लिए काम करती हैं और पैसों की तंगी के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके पति देश के गृह विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह अब तक नहीं मिली है। सनी ब्लेलॉक ने कहा, मैं बुरी तरह परेशान हूं और दुखी भी हूं, गुस्से में भी हूं और नाराज भी। गुस्से में इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कौन सी पार्टी सत्ता में है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार के लिए काम करते हैं और पूरा मन लगाकर काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। मैं परेशान हूं, ठगा हुआ महसूस कर रही हूं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ है। ये थी सनी ब्लेलॉक जो फिलहाल बेरोजगार हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
आज आज है 11 जनवरी दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। जैसे कि उम्मीद थी, अमित शाह ने चुनाव का बिगुल बजाते हुए नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने महागठबंधन पर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने रफाल के मुद्दे पर कांग्रेस को खास तौर पर निशाना बनाया। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
2019 आम चुनाव के पहले होने वाले पार्टी के आखिरी राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत कुछ प्रतीकात्मक था। 3 तलाक पर पार्टी की कोशिशों का गुणगान करते झंडे, मोदी और शाह के साथ साथ एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य पार्टी नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर, अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेज पर लगी तस्वीर और वंदे मातरम का गायन भी, जिसका गायन हालांकि पार्टी के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत में होता रहा है, लेकिन इस बार उसका गायन किया शबाना रहमान ने, जिन्हें मंच से खास तौर पर आमंत्रित किया गया।
वंदे मातरम।
और अमित शाह 2 बार बोले, अध्यक्ष भाषण में, लेकिन उसके पहले 1 बार और। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव देर शाम पारित होने हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि वो किन मुद्दों पर होंगे।
देश के अगड़े समाज के युवाओं की सालों से एक मांग थी कि जो आर्थिक रूप से निर्बल है वो युवाओं को कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल कैबिनेट में फैसला करा, दोनों सदनों में बिल को पारित कराकर करोड़ों युवाओं के स्वप्न को साकार करने का काम किया।
आरक्षण का जिक्र करते वक्त अमित शाह ने सिर्फ अगड़ों की बात की। हालांकि कहा गया था कि 10% के इस सामान्य कैटेगरी में दिए जाने वाले रिजर्वेशन में मुस्लिम और दूसरे मजहब के लोग भी शामिल होंगे। आर्थिक क्षेत्र में लिए गए दूसरे बड़े फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने उन व्यापारियों को GST से मुक्त कर दिया है जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये है, और 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों या उद्योग धंधों को अब से महज 1% कॉरपोरेट टैक्स भरना होगा। व्यापारी वर्ग को राम करने के बाद अमित शाह ने रुख किया राष्ट्र की सुरक्षा की तरफ और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया जो सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था।
पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए, गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
और फिर एक गोला उन्होंने महागठबंधन पर भी गिराया।
राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है।
हाल के दिनों में नितिन गडकरी और कुछ दूसरे चंद नेताओं के बयानों और साक्षात्कारों के बाद मोदी के नेतृत्व पर कुछ तरफ से उंगलियां उठाई गई थी, लेकिन मोदी अब भी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये उन नारों से साफ हो जाना चाहिए जिनमें लिखा था अब की बार फिर मोदी सरकार। अमित शाह ने याद दिलाया कि जब मोदी सरकार आई थी तब पार्टी 6 राज्यों में सत्ता में थी, 5 साल बाद 16 सूबों में बीजेपी की हुकूमत है। शाह ने कहा कि पार्टी को 2019 का युद्ध जीतना होगा।
पराक्रम की पराकाष्ठा कर एक बार 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, दक्षिण सिर्फ छूट गया है, केरल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम अपने जीवन काल के अंदर ही समाप्त।
अपने भाषणों में एक के बाद एक नेता ने याद दिलाया कि 2014 के पहले का अधिवेशन भी बीजेपी ने दिल्ली की इसी रामलीला मैदान में किया था और तब का नारा था 272+, और वैसा हुआ भी। इसे एक बार फिर से दोहराना है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
सवर्णों के आरक्षण पर संसद की मुहर, किसी ने बताया राजनीतिक स्टंट तो किसी ने कहा सवर्णों से धोखा। क्या है इस विषय पर आपकी राय? कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 12 जनवरी को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत प्रशासित कश्मीर से सिविल सेवा में टॉप करने वाले शाह फैसल ने अपने इस्तीफे के बाद आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने का इरादा नहीं है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर से सिविल सेवा में 2009 में टॉप करने वाले IAS अधिकारी शाह फैसल ने अपने इस्तीफे के दो दिन बाद जुम्मा को श्रीनगर में पत्रकार सम्मेलन से संबोधित होते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि वो पहले कश्मीर के युवाओं और दूसरे स्टेक होल्डर्स से राय लेने और उनसे मिलने के बाद ही किसी भी राजनीतिक दल में जाने का निर्णय लेंगे। फैसल बता रहे थे कि फिलहाल वो कश्मीर के युवाओं और दूसरे लोगों से मिलकर ही किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का फैसला लेंगे। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में ये भी बताया कि वो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह भारत में बीते कुछ वर्षों से कट्टरपंथ और लिंच मॉब राष्ट्रवाद का माहौल बढ़ा है और जिसकी वजह से देश का अल्पसंख्यक तबका काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। फैसल बता रहे थे कि बीते दो वर्षों से भारत में कट्टरपंथ और लिंच मॉब राष्ट्रवाद का माहौल पड़ा है जिसकी वजह से देश का अल्पसंख्यक तबका काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और मुझे निराश करने का ये भी एक कारण रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए फैसल ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ उनका इस्तीफा एक विरोध है और केंद्र सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। शाह फैसल ने बताया कि अपने पद से इस्तीफा देने का एक और कारण ये रहा है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर सरकार इस मुद्दे को लेकर नाकाम हुई है। फैसल ने प्रेस सम्मेलन के दौरान ये भी कहा कि बीते कुछ वर्षों से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर कई बार हमले करने की कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35A और धारा 370 को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
छत्तीसगढ़ में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताज़ा रिपोर्ट में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 4600 करोड़ रुपए से अधिक के ई टेंडरिंग घोटाले का मामला सामने आया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में कैग ने पिछली सरकार की कामकाज का लेखा जोखा पेश करते हुए रमन सिंह की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई कई गड़बड़ियों को उजागर किया है, लेकिन 17 विभागों में हुई ई टेंडरिंग को लेकर कैग के दावे ने राज्य में सनसनी फैला दी है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 17 विभागों में पिछले साल 4601 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए और जिन 74 कंप्यूटरों से ये ई टेंडर जारी किए गए, ठेकेदारों ने भी टेंडर भरने के लिए उन्हीं कंप्यूटरों का उपयोग किया। कैग के प्रधान महालेखाकार BK महंती ने अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सारे टेंडर जारी करने की आशंका जताई।
28 टेंडर में जिसका वैल्यू है 4601 करोड़, तो उसमें 74 मशीन यूज हुई है। उस मशीन में ऑफिस का जो लोग हैं, डिपार्टमेंट का लोग, 17 डिपार्टमेंट का है, आदमी कहाँ बैठ के ऑफिस का आदमी काम करता है, वेंडर कहाँ बैठ के काम करता है पता नहीं, लेकिन सब एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं।
महंती का कहना था कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से विस्तृत जांच कराए जाने की जरूरत है।
हमने उसको रेकमेंड किया है कि इस जो पूरा प्रकरण को एक विजिलेंस एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाए बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी।
रमन सिंह के सरकार की गड़बड़ी का ये मामला सामने आया तो अब पखवाड़े भर पहले ही सरकार में आई कांग्रेस पार्टी को भी निशाना साधने का अवसर मिल गया। राज्य के संसदीय और विधि विधायी मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि सारे मामलों की जांच कराई जाएगी।
अब हम लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ना है, पिछली सरकारों की काले कारनामों को पर्दाफाश करना है और जिस तरीके से CAG के रिपोर्ट में कारनामों की चर्चा हुई है तो निश्चित रूप से उसको सुधारने के संदर्भ में निर्देश दिए जाए।
हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना था कि इस मामले में विधानसभा से बाहर चर्चा करना उचित नहीं है।
CAG की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर में पब्लिक अकाउंट कमेटी विचार करती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो निर्णय देती है उसके आधार पर निर्णय होता है, इसलिए मुझे लगता है कि CAG की रिपोर्ट पर बाहर चर्चा करना उचित नहीं।
दूसरी ओर जिन विभागों पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उन विभागों से जुड़े रहे मंत्रियों का कहना है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पिछले सरकार में शिक्षा मंत्री रहे केदार कश्यप ने भी यही दावा किया।
सीएजी की रिपोर्ट है तो उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होना चाहिए। रिपोर्ट को पूरा देखा नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई।
फिलहाल कैग की रिपोर्ट विधानसभा की लोक लेखा समिति को दी जाएगी और उसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
कैफी आजमी की गिनती भारत के महानतम शायरों में होती है। शायरी के साथ साथ फिल्म गीतकार के रूप में भी कैफी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। कैफी की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
कदर अब तक तेरी तारीफ ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस हश्क पेशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हंसी भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उद्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
अब से करीब 71 साल पहले हैदराबाद के एक मुशायरे में जब कैफी आजमी अपनी ये नज्म सुना रहे थे तो उनके इसी अंदाज ने एक हसीना को किसी और के साथ अपनी मंगनी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में वो हसीना उनकी पत्नी बनी। शौकत कैफी ने बीबीसी से बात करते हुए उस मुशायरे और कैफी के साथ अपनी शादी को याद किया।
एक मुशायरा हुआ था, लड़कियां जो हैं कैफी पे ऑटोग्राफ लेने के लिए झुकी हुई थी, मक्खियों की तरह बैठी थी। जब जरा भीड़ भाड़ कम हुई तो मैं कैफी आदमी के पास गई। ऐसा लगा कि वो मुझे बहुत पसंद करने लगे और मैं भी उनको चाहने लगी। बहुत डिस्टरबेंस हुई और वो लड़का भी आ गया, वो भी बेचारा खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अब्बाजान से कहा कि मैं सिर्फ कैफी से शादी करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी। मेरे फादर बहुत ही इंटेलिजेंट और बेहद प्रोग्रेसिव आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमको बॉम्बे लेके जाऊंगा और वहां पर तुम देखना कि कैफी आदमी की जिंदगी कैसी है, रहन सहन क्या है। अब्बाजान मुझे चौपाटी पे लेकर गए घुमाने के लिए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। तो मैंने अब्बाजान को एकदम उनको देखा और वहीं खड़ी हो गई और कहा कि अगर कैफी मट्टी भी उठाएंगे, मजदूरी भी कर रहे होंगे, तो भी मैं उनके साथ मट्टी उठाऊंगी और मैं उनसे शादी करूंगी।
कैफी और शौकत की बेटी शबाना आजमी अभी भी वो दिन भूली नहीं है जब उनके वालिद उन्हें अपने साथ उन मुशायरों में ले जाते थे।
दरअसल मेरी मम्मी क्योंकि थिएटर में काम करती थी, जब उनको अपने परफॉर्मेंसेस के लिए जाना पड़ता था या टूर पे जाना पड़ता था तब अब्बा ही हमारी देखभाल करते थे। घर में पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी मेड, तो अब्बा हमको अपने साथ लेकर जाते थे मुशायरों में। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहाँ स्टेज पर ही गावतकियों के पीछे बाबा और मैं सुला दिए जाते थे। उसके बाद जब बहुत जोर से तालियों की गूंजने की आवाज सुनाई देती थी तो हम जाके देखते थे, क्योंकि हमको यकीन था कि अब्बा का नाम अनाउंस किया जाएगा और वो हमेशा आखिर में ही पढ़ते थे।
बुध शिखर कोई कहीं से भी ना आने पाए, हमने कुछ बुध अभी सीने में सजा रखे हैं, अपनी यादों में बसा रखे हैं। दिल पर ये सोच के पथराव करो दीवानों कि जहाँ हमने सनम अपने छुपा रखे हैं वहीं गजनी के खुदा रखे हैं। बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, अगर खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे। तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो बना लो शायद, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो क़यामत होगी।
शायरी किताबों में पढ़ी तो जाती ही है लेकिन सुनी भी जाती है, लिखने की तरह इसकी अदायगी भी एक कला है और कहना ना होगा कि कैफी इस कला के माहिर थे। मशहूर शायर निदा फाजली ने एक बार बीबीसी को बताया था।
हिंदी में एक नाम था शिव मंगल सिंह सुमन, उनका जो रिसाइटल था वो बड़ा एडिक्टिव होता था, प्रभावशाली होता था और ऑडियंस को सही माना में जिनका ये होल्ड करने वक्त ही उनके अंदर एक कैपेसिटी थी। अगर हिंदुस्तान में दूसरी जुबानों में ऐसा कोई रिसाइट करने वाला पोइट हुआ है तो उर्दू में उसका नाम कैफी आजमी था। कैफी आजमी जब स्टेज पे आते थे तो उनकी आवाज, उनके हाव भाव और उनके ड्रामेटिक प्रस्तुति थी वो इतनी इफेक्टिव होती थी कि उनके सामने अच्छे अच्छे गाने वाले, ऊंचे सुरों में शेर सुनाने वाले जो है वो पानी मांगते थे।
जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को।
शुरू में कैफी अपने शेर तरन्नुम में पढ़ा करते थे, लेकिन एक बार सरोजनी नायडू से मुलाकात के बाद उन्होंने गा कर शेर कहना बंद कर दिया।
सरोजनी नायडू का एक वाकया है कि सरदार जाफरी और कैफी आजमी जब दोनों उनसे मिलने गए तो उन्होंने, सरोजनी नायडू ने अपने तरीके से उनसे कहा कि साहब कुछ सुनाइए, तो इन्होंने दोनों ने अपने अपने अंदाज में तरन्नुम से सुनाया। तो सरोजनी नायडू ने उनको सलाह दी कि खुदा के लिए आइंदा से तुम मुझे ही नहीं बल्कि किसी को भी तरन्नुम से अपने शेर नहीं सुनाओ। वो दिन था, उसके बाद सरदार जाफरी हो या कैफी आजमी हो, इन्होंने हमेशा रिसाइट किया है और अपने रिसाइटल से ही लोगों को होल्ड किया और उन्हें मुतासर किया।
शादी होने के बाद कैफी अपनी पत्नी शौकत को पहली बार अपने गांव मिजवा लेकर गए, जहां उनके घर में न तो बिजली थी और न ही पानी।
वहाँ पर बहुत गर्मी होती थी, एक पंखा ऊपर लगा रहता, डोरी से खींचने से हवा चलती थी। मैं और मेरा बच्चा जो है वहाँ सोते रहते थे और कैफी अपने पैर की अंगूठे में वो बांध के रखते थे रस्सी, और वहाँ पर वो लिखते जाते थे गर्दन झुका के मेज पे और पंखा भी झेलते जाते थे। तो गांव के लड़के जो है उनको ये खबर पहुंच गई कि कैफी आदमी जो है अपनी बीवी का काम करते हैं, तो वो उनको डराते थे, डोरी खींचने की नकल करते थे।
वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्ब जमी पर उभर आया होगा। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा।
मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
कैफी हमेशा कुर्ता पायजामा पहनते थे। जब एक कॉन्वेंट स्कूल में उनकी बेटी शबाना के दाखिले की बात आई तो वो उस स्कूल में नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी।
क्वीन मैरीज हाई स्कूल बॉम्बे का, उसमें माँ बाप दोनों को अगर अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो एडमिशन नहीं देते थे बच्चे। उस जमाने में सुल्ताना जाफरी इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया ये कहके कि वो शौकत कैफी हैं और मुनीश नारायण सक्सेना जो कि अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे वो मेरे वालिद हैं। जब पेरेंट्स का इंटरव्यू हुआ, अब इसके कई साल बाद ऐसा हुआ कि मेरी हिंदी की टीचर ने कहा कि जो आते हैं तुम्हारे पेरेंट्स डे पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल से हैं उस आदमी से जो कल मैंने कवि सम्मेलन और मुशायरे में जिनको पढ़ते हुए देखा था कैफी आदमी के नाम से। तो मैं बिल्कुल नीली हो गई डर के मारे और मैंने कोई कहानी गढ़ दी कि नहीं नहीं असल में क्या हुआ है कि उनकी तबीयत खराब है, उनको टाइफाइड हो गया तो उनको बहुत कमजोर हो गए तो इसलिए आप उनको पहचान नहीं सकी।
शौकत आजमी याद करती हैं कि एक बार उन्हें कैफी मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में चेतन आनंद की फिल्म सफर दिखाने ले गए।
प्रोग्रेसिव राइटर्स की वो मीटिंगें होती रहती थी हर संडे को, वो बन्ने भाई के घर में, सरदार जहीर के घर में होती थी। तो मैंने कैफी से कह दिया था कि मेरा पिक्चर देखने को जी चाह रहा, तो कैफी ने कहा कि हाँ हाँ चलो। तो डुम्मा मार के उस मीटिंग को हम लोग 3 बजे के शो में निकल गए। तो कैफी के पास कुल 2.5 रुपए थे, हम लोग रॉक्सी सिनेमा पैदल पहुंचे और वहां पर 2.5 रुपए के 2 टिकट आ गए। इंटरवल हुआ तो मुझे बहुत प्यास लगने लगी, तो कैफी ने कहा कि अरे देखो वो एक औरत बैठी हुई है 2 पैसे में 1 गिलास पानी दे रही है, तुम जाओ उसके पास और पानी लेके पी लेना
और पैसों के लिए कहना कि वो मेरे शौहर उधर बैठे हैं, मैं अभी उनसे पैसे मांग के लेके आती हूँ। और कैफी ने कहा तुम भाग आना, तो मैं भाग आई। कैफी जो है मुझे चिढ़ाते थे जब वहाँ से हम गुजरते थे कभी बस में, इसमें तो कैफी कहते थे देखो वो बुढ़िया तुम्हारे दो पैसों का इंतजार कर रही है।
कैफी आजमी को कीमती चीजों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो अपना लेखन हमेशा मोंट ब्लां पेन से किया करते थे।
उनके पास कोई जाति किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी नहीं था कैफी साहब के पास, बस एक चीज जिसकी उनको बाकायदा ग्रीक थी वो थे मोंट ब्लां पेन। और मैं जब भी जाती थी जरूर उनके लिए लेकर आती थी, लेकिन एक बार मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे दिया तो उसको बहुत अच्छा खत उन्होंने लिख दिया और बताया कि वो मोंट ब्लां पेन जो है उनके पास ज्यादा महफूज क्यों है बनिस्बत मेरे। और वो अपने पेन को बहुत प्यार से सिर्फ ब्लू ब्लैक इंक से लिखते थे, और वो पेन जो है साफ करके न्यूयॉर्क में एक फाउंटेन पेन हॉस्पिटल है वहाँ भेजे जाते थे उनकी मेंटेनेंस करने के लिए।
कैफी आजमी के बारे में कुछ और कहने से अच्छा है उनकी पत्नी शौकत कैफी से उनका जिक्र सुना जाए।
कैफी जैसे बलन ख्याल प्रोग्रेसिव औरत और मर्द को एक दर्जा देने वाले और अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करने वाले, उन्होंने मुझे कभी आप के अलावा तुम भी नहीं कहा। वो 30 साल फालिज के बाद जिंदा रहे और उसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं उनकी आंखों को देखती थी और मैं हर वो काम करती थी जिसको कैफी चाहते थे। लेफ्ट हैंड बेकार था और पैजामा भी बांध नहीं सकते थे, नहा नहीं सकते थे। नहाना और उनके कपड़े इस्त्री करना, उनको बदलाना, फिर उनके साथ चलना, तो ये काम मैं करती रही सिर्फ इसलिए कि कैफी एक बहुत बुलंद पाया और बहुत अच्छे इंसान थे। उस कैरेक्टर का आदमी मेरी आंखों से अब तक तो नहीं गुजरा।
धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है।
कैफी अपनी दुखों की मुंडेरों में घिर कर नहीं रह जाते, बल्कि अपने दुख को दुनिया के तमाम लोगों से जोड़ लेते हैं। फिर उनकी बात दुनिया के सिर्फ एक इंसान के दिल की बात नहीं, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों के दिल की बात हो जाती है। और आप महसूस करते हैं कि उनकी शायरी में सिर्फ उनका नहीं, हमारा, आपका, सबका दिल धड़क रहा है।
राम वनवास से जब लौट के घर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। जगमगाते थे जहां राम के कदमों के निशान, प्यार की काकशां लेती थी अंगड़ाई जहां, मोर नफरत की उसी राह गुजर में आए। पांव सरजू भी अभी राम ने धोए भी न थे के नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई, विवेचना पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। और अब समय है मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। आज से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो आगामी आम चुनावों में गठबंधन को हराएंगे। पंचकुला की स्पेशल CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी पाया है। उन्हें 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद CBI डायरेक्टर के तौर पर फिर बहाल किए गए आलोक वर्मा ने इसके 48 घंटों के भीतर इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लाउड यूंकर ने कहा है कि ब्रेक्सिट के बदले यूरोपीय संघ के ब्रिटेन को किसी तरह की कोई पेशकश देने का सवाल पैदा नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया के पूर्व में कथित इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के कब्जे वाले एक इलाके में जारी भीषण लड़ाई में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें आ रही है। BBC समाचार।
इसके साथ ही दिन भर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे रवि किशन कुमार, पंकज प्रियदर्शी और मानसी प्रकाश को अनुमति दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक आपके साथ है bbchindi.com। नमस्कार।